नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो क्या अब कोलकाता की डॉक्टर के इंसाफ की लड़ाई राजनीतिक दलों के हाथ में चली जाएगी और वहां से भटक कर कहीं और? इंसाफ की मांग को लेकर कई तरह के आंदोलन होने लगे हैं, लेकिन इन सबके बीच डॉक्टरों के आंदोलन की आवाज और भी मुखर होती जा रही है। वे इंसाफ और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर अड़े हैं। आज भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्रम से नहीं देखेंगे कई चीजों को नहीं जान पाएंगे। 14 अगस्त की रात जिस अस्पताल में गुंडों ने हमला किया, वहां आंदोलन फिर से शुरू हो चुका है। यह वीडियो आज का है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का। यहां पर संघर्ष का नारा फिर से गूंजने लगा है। इसी जगह पर हमला हुआ था और इसके बाद से यहां पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। आंदोलन तेज हो चला है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि जो पूर्व प्रिंसिपल थे उनका इस्तीफा हो। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने मांग की थी कि कोर्ट की निगरानी में जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच कर रही है, हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि प्रिंसिपल के साथ साथ पूर्व वाइस प्रिंसिपल, पूर्व डीन को भी इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा देने के बाद इन्हें पूरी नौकरी के दौरान किसी तरह की पोस्टिंग ना दी जाए। यह वीडियो दिल्ली का है, 16 अगस्त का। स्वास्थ्य मंत्रालय जहां है, निर्माण भवन से थोड़ी दूर पहले यहां जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर जमा हो गए हैं। ये सभी स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलकर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए अलग से एक एक्ट की मांग कर रहे हैं। हाल ही में जेपी नड्डा ने अलग से एक्ट को नकार दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी 24 घंटे की सीमित हड़ताल की घोषणा की है, लेकिन उनकी प्रेस रिलीज में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग का जिक्र नहीं है। जूनियर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सुरक्षा के अलावा पीड़िता के इंसाफ के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। 17 अगस्त को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन करने का ऐलान हुआ है। कोलकाता की डॉक्टर पीड़िता के बलात्कार के बाद और हत्या के बाद से ये सभी डॉक्टर उद्वेलित हैं, देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में रात के वक्त मोबाइल टॉर्च जलाकर मार्च निकाला और यह कई दिनों से दोहराया जा रहा है। इसमें अब नागरिक संगठन और नारीवादी संगठन भी शामिल होने लगे हैं।
ये सीबीआई से हैंडओवर होने से हमारा मांग पूरी होगी, ये तो हम नहीं बता रहे। हम लोगों का मांग है कि इमीडिएट जो एक्यूज्ड है उसको प्रॉपर एविडेंस के साथ पकड़ा जाए एंड उसका एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे। ये हमारा फास्ट मांग है। ये तो मांग पूरी नहीं हुआ, ये हम पहले से ही जुडिशियल मांग किए थे, जुडिशियल इंक्वायरी का। अब वो मांग अभी कोर्ट अंडर कोर्ट सुपर जुरिस्डिक्शन सीबीआई तदन कर रहा है। तो अगर ये दाबी मिट जाए, मांग पूरी हो जाए, हम लोग विथड्रॉ और प्रोटेस्ट। देखिए, जो एक्स प्रिंसिपल थे, एक्स एमएसजीपी अथॉरिटी, उसके प्रेजेंस में ये हुआ है घटना, तो उसको तो अकाउंटेबल है ही है। हम लोग ये डिमांड किया है, उसका रेजिग्नेशन एपोलॉजी लेटर मांग किए हैं। और जो नया प्रिंसिपल है, उसके होने के बावजूद जो क्राइम सीन है उसके उल्टा देख के जो बाथरूम है, रूम है, वो रेनोवेट हुआ है, इसलिए सीबीआई उस पर इंट्रोगेट कर रहा है। एंड वी ऑल्सो टोल्ड देम कि वाई दिस इज ऑकर्ड इन प्रेजेंस ऑफ यू, सो वी ऑल्सो डिमांड दैट यू हैव टू justify you and some written copy should be provided us why this is has occurred.
Na der jitni der hoti jayegi utna insaaf milne ka chance kam hota jayega. Hum ye nahi chahte, hum chahte hain ki foran jo CBI hai press conference karke hame bataye ki kis cheez pe kya kya tathya hai jin aadharon pe arrest kiya ja raha hai, kyunki clearly ye bataya gaya hai ki एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है तो बाकी के लोग कहाँ हैं? अभी तक इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।
कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों का कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। 16 अगस्त को सातवां दिन हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आंदोलन में किसी नेता को आने नहीं दिया। दिल्ली में भी जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांग पर फोकस कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार उनकी मांग मानेगी? कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने भी कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, मगर वे चाहते हैं कि गैर राजनीतिक तौर पर लोग इससे जुड़ें और पीड़िता को इंसाफ मिले।
हमारा जो मूवमेंट है ये शुरू से ही अपॉलिटिकल रहा है, चाहे वो पहला दिन हो या आज का सातवां दिन। हमारा बस एक ही मोटिव था, वो था जस्टिस फॉर पीस। चाहे इसमें कितने भी लोग जुड़े हैं, किसी का भी कोई भी मोटिव हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो, लेकिन हमारा मूवमेंट का एक ही अपॉलिटिकल एजेंडा था, दैट इज जस्टिस। और हम अभी भी हम क्या पूरे कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव, बाकी कॉलेज सब एक ही चीज चाहते हैं कि मूवमेंट और बड़ा बने, अपॉलिटिकली लोग जुड़े, ये मूवमेंट को और बड़ा करे, इसको एस्केलेट करे, ताकि दीदी को जस्टिस जल्दी।
लेकिन यह भी सच है कि डॉक्टरों का यह आंदोलन केवल डॉक्टरों का अब नहीं रहा, राजनीतिक दलों का सब्र और इंतजार खत्म हो चुका है। कई दल कूद पड़े हैं। हम इन सब पर बात करेंगे ही, लेकिन पहले अफवाह और फेक न्यूज की चुनौती पर जोर देना चाहते हैं। इस घटना में जिस तरह से सोशल मीडिया और गोदी मीडिया की भूमिका सामने आई है, उसे समझने के लिए संदेश खाली और सुशांत सिंह राजपूत केस के समय मीडिया की भूमिका और केस के नतीजे याद करने चाहिए। हम इस वीडियो में इसकी भी बात करेंगे। डॉक्टर भी मानते हैं कि अफवाह से उनके केस और आंदोलन को नुकसान हो सकता है।
हम लोगों को तरफ से कोई अफवाह फैलने की कोई आइडिया नहीं था। ये जो फैल रहा है, हम लोगों का जो आंदोलन का उद्देश्य है वो सफल नहीं होगा इससे। तो हम लोग का इससे आंदोलन का जो प्रोग्रेस है वो हैम्पर हो रहा है। तो अभी भी 7 दिन हो चुका है इस घटना के, अभी भी कोई दोषी सब्यस्त नहीं हुआ है, कोई दोषी को गिरफ्तार भी कर नहीं किया हुआ है। अभी हम लोग का जल्दी जस्टिस चाहिए।
तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने अफवाहों का खंडन करने के लिए एक लंबा बयान अंग्रेजी में जारी किया है। तृणमूल के दूसरे सांसद भी ऐसा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को टैग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी को ऐसा करने के लिए कहा गया है। हम इसकी भी बात करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को 3 हफ्ते का समय दिया है, याद रखना जरूरी है। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को 18 अगस्त यानी रविवार तक का समय दिया था और कहा था कि अगर जांच पूरी नहीं हुई तब सीबीआई को यह मामला सौंप दिया जाएगा, लेकिन 13 तारीख से ही यह मामला सीबीआई के पास है। क्या सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से कुछ अलग तथ्य हासिल किए हैं? कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस बयान को याद रखना चाहिए। वे ईमानदारी से जांच का दावा कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर हमने सबूतों को नष्ट किया है तो हमें भी सजा हो सकती है, हमारे ऊपर भी केस किया जा सकता है।
What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta police is concerned. What has Calcutta police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated that some Mahapatro being connected with political Mahapatro. He's an intern whose parents, we verified this. He comes from a very small place. His father is a primary school teacher. Doesn't have any kind of a background, legal background. People are spreading these kind of rumors. And some of them, he says, are his friends, these doctors. It's pathetic.
पुलिस कमिश्नर चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनकी टीम ने जांच में गड़बड़ी की है, सबूत मिटाए हैं, तो उनके खिलाफ भी आईपीसी के सेक्शन 201 के तहत कार्रवाई हो सकती है। यह केस अब सीबीआई के पास है, तो क्या पुलिस कमिश्नर की बात पर भरोसा कर लिया जाए? इतना जरूर है कि वे प्रेस का सामना कर रहे हैं, पत्रकारों के बीच जा रहे हैं और अपने कमरे में पत्रकारों को बुला रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड सवालों के जवाब दे रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के दावे का सही जवाब तभी मिलेगा जब सीबीआई रिकॉर्ड पर आएगी, अपने सबूतों के आधार पर कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाएगी। अभी तक सीबीआई ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोर्ट ने पुलिस की जांच को लेकर कई सवाल उठाए हैं, लेकिन क्या कोर्ट ने सबूतों के नष्ट किए जाने की आशंका जताई है? सीबीआई की जांच से ही ये सारे बातें सामने आएंगी। सबूत नष्ट नहीं करने का दावा कर पुलिस कमिश्नर खुद को दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में एक ही आरोपी है, हमने कभी ऐसा नहीं कहा, हम साइंटिफिक एविडेंस का इंतजार कर रहे हैं। एक और इंटर्न के बारे में उन्होंने कहा कि अफवाह उड़ गई कि उसे बचाया जा रहा है क्योंकि उसके पिता तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हैं। इनके पिता का बयान आया है कि तृणमूल कांग्रेस से संबंध नहीं है और वे एक साधारण नागरिक हैं। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी है। कोलकाता टीवी की डिप्टी एडिटर मौपिया नंदी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है इंटर्न के घर का। लिखा है कि आरजी करके इंटर्न के पिता शुभदीप सिन्हा महापात्रा ने एफआईआर कराई है कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि उनका बेटा किसी मंत्री का बेटा है और दोषी है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक सोमेन महापात्रा ने भी इसका खंडन किया है कि उनका बेटा आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ता है। इसी इंटर्न के बारे में कोलकाता पुलिस के कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि वे अफवाह के आधार पर किसी इंटर्न को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोलकाता पुलिस को इन अफवाहों को लेकर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और अपनी तरफ से एक एक अफवाहों का जवाब देना चाहिए था। पुलिस ने जब कार्रवाई करने की धमकी दी तब जाकर कुछ लोगों ने ट्विटर से अपने ट्वीट डिलीट किए और माफी मांगी। अफवाह उड़ी थी कि सेमिनार रूम तोड़ दिया गया सबूतों को मिटाने के लिए, जो पूरी तरह से गलत है। पुलिस ने कहा, हमने परिवार को कभी भी नहीं बताया कि आत्महत्या का केस है, यह पूरी तरह झूठ है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस से असेसमेंट में गलती हुई है और यह पहले भी हुआ है और कहीं और भी हुआ है। अपनी गलती मान लेना बड़ी बात है, ऐसा आपने दिल्ली दंगों के समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कहते सुना था कि गलती हो गई असेसमेंट में। आपको याद होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को खुद पूर्वी दिल्ली की गलियों में जाना पड़ा और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस कमिश्नर से चार्ज लेना पड़ा। अफवाह एक बड़ी समस्या है, फेक न्यूज भी। इससे निपटने का अब तक सिस्टम बन जाना चाहिए था, लेकिन अस्पताल में जो हमला हुआ वो बिल्कुल फेक न्यूज नहीं है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कई तरह की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई जा रही है, किसी का नाम नहीं है मगर आवाज है। बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की आवाज है और पूरा ब्यौरा उसमें निकल कर आ रहा है। लगता है विश्वसनीय बनाने के लिए ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी देर से जागे, तब तक 2-3 दिनों में काफी कुछ फैल चुका था। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने अंग्रेजी में 3 मिनट 22 सेकंड का बयान जारी किया है और 3 बिंदुओं पर खंडन किया है। हमने अपने संक्षिप्त अनुवाद के साथ इस वीडियो को आपके लिए यहां पेश किया है।
I'm here to put a few facts on record and to bust a few myths and some fake propaganda that is being sent around on social media regarding the horrific rape and murder on 9th of August in RG Kaur Hospital. Number one, there is a figure of 150 grams of bodily fluids being floated around by responsible media. The first thing to remember is that the autopsy, the post-mortem, was carried out in the presence of a judicial magistrate, in the presence of 3 doctors as witnesses, and in the presence of the family. The entire procedure was videographed. It was not possible to tamper with anything. In any autopsy or post-mortem, the weight and situation of each particular organ is commented upon, like the liver, the heart. Similarly, in this case, the inner and outer genitalia was the comment on that, the total weight of the inner and outer genitalia was something close to 150 grams. Number one, bodily fluids are measured in milliliters, not in grams. This was the total weight of the internal viscera of the reproductive organs. It has nothing to do with any amount of bodily fluids found. It is very unfair and irresponsible on the part of media houses, especially responsible ones like the print, to keep propagating this false information. Number two, that the place of occurrence, the crime scene, was tampered with and there was some kind of construction going on there. Please understand the facts surrounding this. The crime scene, the PO, the place of occurrence, was sealed off by the police immediately after the crime came to light. It is now only within the Calcutta police and CBI are the only people who can access that. It is secured. After the incident happened, the health secretary came to the spot and met with doctors and students. The students said that they needed a rest area and they needed toilets to be constructed immediately. The superintendent engineer was asked without delay on behalf of the students to go and construct this. This is why the work started there, to construct the toilets and the rest area in keeping with the students' demands at a place of their choosing. This is not the place of occurrence or the PO or the crime scene, which was completely separate. Number three, that there was somehow an inquiry committee set up to investigate the mental health or the psychiatric condition of the victim. This is complete and utter rubbish. After the 9th of August, when the FIR was filed and the police took over the investigation, an internal administrative committee board was set up, as is normal standard operating procedure in any situation like this, to see if there were any lapses on the part of the hospital. This 5-member inquiry committee, headed by, had a chairperson who was the head of department, who was the dean of student affairs, and the convener was the head of the Department of Anatomy. 3 other members was head of the Department of Medicine, another HOD of Anatomy, and the head of the Department of Psychiatry. This was only to look into administrative lapses and to see an internal inquiry as a standard operating procedure. This was no inquiry to go into the psychiatric state of the student. Please understand. These are 3 important things one needs to keep in mind. Thank you very much.
हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बलात्कार और हत्या के मामले में कैसे कवर किया जाना चाहिए और किन बातों को छोड़ देना चाहिए। जूनियर डॉक्टर भी मांग कर रहे हैं कि सीबीआई केस की प्रगति की डिटेल उनसे साझा करे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी ऐसी मांग की है कि सीबीआई हर दिन केस का अपडेट दें। लेकिन क्या सीबीआई ऐसा कर सकती है? क्या यह संभव है? आप याद कीजिए, इसी वीडियो में हमने पुलिस कमिश्नर का बयान दिखाया। वे कह रहे हैं जितना कानूनी रूप से संभव है उतना हमने जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया। जितना कानूनी रूप से संभव है, इसका मतलब समझना जरूरी है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता का नाम या पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी ऐसे तथ्य जिनसे पहचान की जा सके उन्हें सार्वजनिक करने पर भी रोक लगा दी गई और भी कई निर्देश जारी किए गए। उसके बाद 2020 की गृह मंत्रालय की बलात्कार के मामलों में जांच को लेकर गाइडलाइन आई। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी अफसर बलात्कार के मामलों की जांच से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है उसे केस या पीड़िता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नहीं, मीडिया से भी नहीं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी साझा नहीं की जा सकती है। तो क्या अमित शाह अपनी गाइडलाइन वापस ले सकते हैं, केस की जानकारी साझा करने दे सकते हैं? शायद नहीं। जूनियर डॉक्टर की बात समझ आती है, उनका इस वक्त इन संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। कानून का वह दायरा सीबीआई पर भी लागू होता है, याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कभी इसकी इजाजत नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई स्वतंत्र संस्था नहीं है। यह भी याद रखना चाहिए कि जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इसी जुलाई महीने में सरकार के इस दावे को सिरे से नकार दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली एजेंसी है। चूंकि इस वक्त सब भावुक हैं और राजनीतिक रूप से उद्वेलित हो चुके हैं, फिर इस गाइडलाइन को तुरंत देखना चाहिए। अफवाहों को भी रोका जाना चाहिए, लेकिन याद रखना चाहिए पीड़िता के साथ जो घटना हुई वो अफवाह नहीं है, उसकी हत्या हुई है, यह सब अफवाह नहीं है। आरजी कर मेडिकल अस्पताल में हमला हुआ, इमरजेंसी वार्ड और दूसरे वार्ड में हमला हुआ, कई सारी चीजें तोड़ दी गईं, यह सब अफवाह नहीं है। किसने किया? जाहिर है अगर पहचान साबित नहीं होगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बहुत मुश्किल है तथ्यों और मिथकों को अलग करना। कई तरह के वीडियो और ऑडियो वायरल हो चुके हैं। पुलिस को यही पता करने में 1 साल लग जाएगा कि कहां कहां खबरें कैसे फैली और छपी। 14 अगस्त की रात आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुंडों की भीड़ कैसे आ गई, इतना सब कुछ तहस नहस कैसे कर गई? जैसा कि वायरल वीडियो में दिखा है कि बड़ी संख्या में लोग आए थे, तो इसकी प्लानिंग किसने की? कहां से इतनी संख्या में लोग आ गए? पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिली? अगर कोलकाता पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है, तो उससे कब तक उम्मीद की जाए कि वह इसका पर्दाफाश करेगी और इतनी भीड़ लाने वाले को सामने ले आएगी? तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया है कि ये किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हों, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोलकाता पुलिस का बयान है कि इस मामले में अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान सोशल मीडिया के फीडबैक के आधार पर की गई है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने अपील जारी की है कि अगर कोई भी गुंडागर्दी करने वालों को पहचानता है तो वो पुलिस को सूचना दे, चाहे वह किसी भी दल का हो, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने आज फिर से अफवाह न उड़ाने की अपील की है। अभी तक पीड़िता के इंसाफ को लेकर आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब इस आंदोलन में अस्पताल पर हमले का मुद्दा भी जुड़ गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है, और राजनीतिक रूप लेने के कारण अब बात केवल कोलकाता की नहीं हो रही, दूसरे राज्यों की घटनाओं की भी बातें हो रही हैं, जिसकी बात इस वक्त नहीं होनी चाहिए थी। इसे ही व्हाट अबाउटरी कहते हैं। मतलब जब आप कोलकाता की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की घटना का जिक्र किया जाने लगे और कोलकाता की बात से ध्यान हट जाए। इससे नुकसान कोलकाता की पीड़िता को होता है, या इसलिए भी होता है कि राजनीतिक दलों का रिकॉर्ड भी संस्थाओं की तरह बेहद खराब है। या नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इसे होने से रोका जा सकता है वाउट अबाउटरी को? खासकर तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किला से कह दिया महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में कड़ी सजा की बात की, तो समझा गया उनका इशारा कोलकाता की तरफ ही था।
इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है।
लेकिन जब सजा माफ कर बलात्कार पीड़ितों को रिहा किया जाता है, तब तो उसे लेकर लोगों ने काफी सवाल उठाए। क्या प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया दी? 15 अगस्त 2022 को इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा की बात की थी, और उसी दिन गुजरात में बिल्किस बानो के साथ बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए 11 लोगों की सजा माफ कर दी गई, उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया गया। जब वे बाहर आए तो उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत हुआ। इस बार भी देखिए, 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन था, 13 अगस्त को उसे 21 दिन की परोल पर रिहा कर दिया जाता है। 2017 में इस राम रहीम को दो लड़कियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा दी गई, और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उम्र कैद की सजा दी गई। लेकिन ये आदमी 13 बार फरलो और परोल पर बाहर आ चुका है 7 साल की सजा के दौरान 255 दिनों के लिए। बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राम रहीम को इतनी आजादी है? क्या इसके खिलाफ बीजेपी कोई आंदोलन कर रही है? क्या बीजेपी की महिला नेताएं उन दो लड़कियों के इंसाफ के लिए राम रहीम के आश्रम के बाहर धरना दे सकती हैं? हरियाणा, पंजाब या राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले राम रहीम को 6ठी बार परोल दिया गया। जब बीजेपी राम रहीम को परोल दिए जाने के खिलाफ नहीं बोल सकती, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि कोलकाता में उसके प्रदर्शन का क्या मतलब है? खासकर तब जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, क्या बीजेपी को अब सीबीआई पर भरोसा नहीं? कोलकाता हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उसमें एक याचिका बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की भी थी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हुई, क्या इंसाफ मिल गया? बीजेपी ने क्या किया? आज तक वहां आंदोलन होता रहता है। राजनीतिक दलों का आंदोलन अक्सर अपने अपने मुद्दों को ले आता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पीड़िता के घर जाना या पुलिस कमिश्नर का छात्रों के बीच जाकर कई घंटे तक बात करना, भले यह सब काफी नहीं हो, लेकिन यह सही है कि मुख्यमंत्री घटना के तीसरे दिन ही परिवार से मिलने गईं। बीजेपी के राज्यों में जब इस तरह की घटना होती है तब क्या उनके नेता या मुख्यमंत्री पीड़िता के घर पहुंचते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी या गुजरात के मुख्यमंत्री बिल्किस बानो के घर चले गए थे? गुजरात ने बलात्कार के मामले में सजा पाए दोषियों की सजा कम कर दी गई और रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप पढ़िए तो पता चलेगा कि उन बलात्कारियों को बचाने के लिए किस तरह का खेल खेला गया। कोर्ट ने वापस जेल भेजा। ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखे जा सकते हैं, मगर यह बहुत जरूरी है। नवंबर 2023 की घटना है बनारस की। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के साथ क्या किया? इन तीनों पर बंदूक की नोक पर उसे निर्वस्त्र करने, गैंग रेप करने के बाद वीडियो बनाने का आरोप लगा। इस घटना में एफआईआर कराने के लिए छात्राओं को आंदोलन करना पड़ा, तब भी एफआईआर देरी से हुई, कुछ दिनों के बाद। दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी है कि घटना के चार दिन बाद ही इनका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। सातवें दिन इन्हें लड़की ने सीसीटीवी की फुटेज से पहचान लिया, मगर ये कब पकड़े जाते हैं? 60 दिनों के बाद। और तो और, ये लोग मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने गए। कुणाल पांडे तो बीजेपी के बनारस इकाई के आईटी सेल का संयोजक था, सक्षम पटेल भी आईटी सेल और आनंद चौहान भी आईटी सेल से जुड़ा था। तीनों बनारस आईटी सेल में काम करते थे और बनारस प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर क्या कभी कुछ बोला? जबकि उनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। अगर आज एक भी तस्वीर किसी भी आरोपी की ममता बनर्जी के साथ निकल आए या तृणमूल के किसी भी नेता के साथ निकल आए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गोदी मीडिया और बीजेपी किस तरह का तूफान पूरे देश में खड़ा कर देगी। अभी से ही पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग होने लगी है। क्या यही मांग उत्तराखंड, यूपी और गुजरात में की गई थी? क्या ममता बनर्जी की तरह योगी दबाव में आए कि वे बनारस आकर मातृ एंड नारी शक्ति की रक्षा में पैदल मार्च करें? ममता बनर्जी को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्या इस मामले में योगी सरकार ने पीड़िता को इंसाफ दिला दिया है? क्या धामी सरकार ने अंकिता भंडारी के केस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिला दिया? तो क्या सीबीआई 3 हफ्तों में कोलकाता कांड के केस को सुलझा देगी? इंसाफ कब मिलेगा? जूनियर डॉक्टर क्या करें, किस पर भरोसा करें? उनकी साथी की अस्पताल में हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, वो कैसे खुद को समझाए? कोलकाता के आम शहरी भी इस घटना से आक्रोशित हैं और सड़कों पर आ रहे हैं। इनमें हो सकता है तृणमूल को ही वोट देने वाले, लेकिन इस शहर के लोग सड़कों पर उतर तो रहे हैं, क्या ये अच्छा संकेत नहीं है? जंतर मंतर पर जब महिला पहलवान धरने पर बैठी, बीजेपी के सांसद पर आरोप लगा रही थी, टूट कर रोने लगी, हताश होकर खेल से संन्यास ले लिया, तब दिल्ली और दिल्ली के लोगों ने क्या किया? उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन इस मामले में कोलकाता उमड़ पड़ा डॉक्टर के इंसाफ के लिए। यही कोलकाता की जान है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिनट मिनट पर बयान देना पड़ रहा है और पुलिस कमिश्नर को अपनी गलती माननी पड़ रही है।
जब तक हम लोगों का जो डिमांड था जो कल्प्रिट्स है उसको शनाख्त किया जाए और उस लोगों को इंटरोगेशन का अंदर लाके अरेस्ट किया जाए एंड प्रॉपर जस्टिस मिलना चाहिए, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए आया है, इससे हम लोग खुश है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम खुश है, बट सीबीआई आ गया मतलब न्याय विचार मिल गया ये नहीं है। तो सीबीआई के पास जो बात आ रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन का आ रहा है, तो हम तो यहाँ पे है, हम लोगों के थ्रू से कम्युनिकेटेड हो, प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हो। जब तक ये प्रॉपरली कम्युनिकेटेड हुए थे, जो हम लोगों का पहला और मुद्दा मांग है वो मांग जब तक कंप्लीट न हो रहा है वो भी चलेगा। लेकिन और एक भी मांग है, जो एक्स प्रिंसिपल था उसको इंटरोगेशन के अंदर ला जाए।
राजनीतिक दलों का इंसाफ के पक्ष में उतरना आप हर वक्त गलत नहीं कह सकते, वो अब भी उतर सकती हैं और उतरने से उनके कई बार उन मामलों में जान आ जाती है, इंसाफ की प्रक्रिया आगे बढ़ती है जिन मामलों को सरकारें दबाने का प्रयास करती है, मगर अफसोस हर जगह उनकी लापरवाहियों और आरोपियों को बचाने के ट्रैक रिकॉर्ड के कारण कोलकाता कांड की राजनीतिक लड़ाई भी उलझती जा रही है। बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिख दिया, केंद्रीय सुरक्षा बल अस्पताल में तैनात किए जाएं। बीजेपी ने यह भी ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में कोलकाता में 2 से 4 के बीच रास्ता जाम करेगी। आज कोलकाता में बीजेपी और पुलिस के बीच कुछ झड़प हुई और कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, ऐसी खबरें हैं। बीजेपी की महिला मोर्चा ने पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों पर मौन रहकर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। सीपीएम ने भी शुक्रवार और शनिवार को आंदोलन का ऐलान किया है। सीपीएम ने राज्यव्यापी धिक्कार दिवस की घोषणा की है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री, राज्य गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। यह दोनों मंत्रालय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ही पास है। सीपीएम नेता सुजान चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ है, तृणमूल ने यह हमला कराया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है बीजेपी और लेफ्ट ने कराया है। सीपीएम के अलावा एसयूसीआई ने 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया। 17 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस सभी ब्लॉक, वार्ड और नगर पालिका में बंगाल को बदनाम करने की बाम और राम साजिश के खिलाफ धरना देंगी। 18 अगस्त को भी सभी ब्लॉक में टीएमसी का धरना होगा। तृणमूल का कहना है कि यह धरना मेडिकल कॉलेज के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कारण बताया है कि क्यों ममता बनर्जी ने मार्च करने का फैसला किया है। डेरेक ने सीबीआई से मांग की है कि हर दिन केस के बारे में अपडेट दे। सीबीआई इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे। डेरेक ने लिखा है कि सीबीआई के पास जाने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब दो हालात, राजनीतिक पार्टी के रूप में तृणमूल अभियुक्त के पक्ष में नहीं है, वह भी सीबीआई से मांग कर रही है कि जो भी शामिल है उसे गिरफ्तार किया जाए और सजा दी जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव तो है, अगर वो गुजरात या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो शायद ऐसा नहीं होता, बशर्ते वे बीजेपी की मुख्यमंत्री होती। लेकिन ये बंगाल का भी अपना चरित्र है कि महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, वहां का यह जन दबाव भी है। केवल राजनीतिक नजरिए से मत देखिए, बंगाल की जनता का अपनी तरफ से दबाव भी है कि मुख्यमंत्री को लगातार डॉक्टरों से संवाद करना पड़ रहा है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर डॉक्टरों को लगता है कि उनके पांव छूने से वे संतुष्ट हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार है। आप 5 दिनों से धरना कर रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। आप याद कीजिए, जंतर मंतर पर जब महिला पहलवान धरना दे रही थी तो क्या हुआ, पुलिस ने कैसे उन्हें घसीटा, बस में बिठाकर ले गई।
बोलबो आगामी काल सब ব্লকে ব্লকে মিছিল সংগঠিত করবেন দোষীদের ফাঁসির দাবিতে এবং বাম রাম চক্রান্তের বিরুদ্ধে। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, যেটা সত্য সত্য উদ্ঘাটিত হোক, কিন্তু অসত্য ঘটনা নিয়ে কেউ কেউ ফেক ভিডিও তৈরি করে অসত্য সংবাদ দিয়ে মানুষের মনকে উত্তেজিত করে দিচ্ছে, আসল সত্যি জানবার জন্য নয়। আসল মিথ্যেটাকে সামনে এনে সত্যটাকে লুকিয়ে দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব, দরকার হলে দল, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা কি বলছি, সাধারণ মানুষ কি বলছে যেটা সত্য, সেই সংবাদগুলো আপনারা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন। আজকাল মনে রাখবেন, সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সব সংবাদ সত্য নয়।
इसका मतलब यह नहीं कि जवाबदेही से ममता बनर्जी को छूट मिलनी चाहिए, बल्कि यह सही है कि जूनियर डॉक्टरों और नागरिकों के आंदोलन का दबाव मुख्यमंत्री पर पड़ रहा है। ऐसा ही आईआईटी बीएचयू के केस में हुआ होता, अंकिता भंडारी के केस में हुआ होता, तो आज बलात्कार के केस में पूरे देश में एक ही राजनीतिक पैमाना होता और यह सबके लिए अच्छा होता, ताकि अपराधी एक बात अच्छी तरह से जान लेता कि उसे कोई नहीं बचा पाएगा, ना उसकी जाति, ना उसका धर्म, ना उसका राजनीतिक दल, मगर ऐसा कहां होता है। इसलिए जब आप जूनियर डॉक्टरों की बेचैनी की तरफ देखते हैं तो खुद को किसी भी तरह से दिलासा देना मुश्किल हो जाता है। आप उनके साथ खड़ा ही महसूस करते हैं और यही सही भी है। लेकिन आप जब राजनीतिक दलों की सक्रियता की तरफ से देखते हैं तो सारा मामला बदल जाता है। पता चल रहा है कि एक बार फिर से बंगाल के मुद्दे को बड़ा किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं हो रहा। पिछले 10 साल में बंगाल के कई मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दे की संभावना तलाशी गई। बलात्कार और हत्या के ऐसे मामलों में गोदी मीडिया और सोशल मीडिया पर इतनी थ्योरी चला दी जाती है कि जांच और फैसले का मतलब नहीं रह जाता। यह जब आता है अंतिम रूप में तब तक काफी कुछ बदल चुका होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, उस समय याद कीजिए कितना घनघोर कवरेज हुआ। जो मन में आया वो चला दिया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबने किनारा कर लिया। क्या हम ठोस तरीके से इंसाफ हासिल करने के बजाय इन्हीं सब बातों को दोहराते रहें? सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या हुआ? नवंबर 2019 में बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव हार गई थी। 2020 में बिहार में चुनाव होने थे। सुशांत सिंह राजपूत का संबंध बिहार से था, अच्छे अभिनेता भी थे और एक बड़े तबके में बहुत पसंद भी किए जाते थे। जैसे ही उनकी खबर आई, गोदी मीडिया ने कवरेज का घमासान मचा दिया। आप याद कीजिए, दर्जनों कैमरे रिया चक्रवर्ती का पीछा करते थे। रिया चक्रवर्ती को लेकर तरह तरह की थ्योरी चलाई गई और उन्हें कसूरवार साबित कर दिया गया। कई हफ्तों तक गोदी मीडिया के चैनलों पर केवल सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर डिबेट होती रही और रिया चक्रवर्ती को कैमरे दौड़ाते रहे। जस्टिस फॉर सुशांत का हैशटैग चलाया गया। भावुकता चरम पर पहुंच गई। रिया चक्रवर्ती ने कितना कुछ झेला होगा, मानसिक आघात का अंदाजा कीजिए। ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई। 6 हफ्ते बाद 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी। हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दावे को नकार दिया कि रिया चक्रवर्ती किसी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। मार्च 2021 में एनसीबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन जुलाई 2023 में वही एनसीबी सुप्रीम कोर्ट से कहती है अब जमानत का विरोध नहीं करेगी। रिया चक्रवर्ती ने फिल्म लाइन छोड़ दी। उनका उभरता हुआ फिल्मी करियर बर्बाद हो गया। अब वे पॉडकास्ट करती हैं। देश के मीडिया, टीवी, अखबारों में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो मीडिया ट्रायल चला उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह सब आपराधिक अवमानना के बराबर है। अदालत ने रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के कवरेज पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी कवरेज घृणापूर्ण रही है। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता की मौत और उसके बाद की घटनाओं पर इन टीवी चैनलों द्वारा रिपोर्ट, चर्चा, बहस, साक्षात्कार का प्रसारण प्रथम दृष्टया अवमाननापूर्ण है, जिसमें आपराधिक अवमानना के तत्व हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जांच को प्रभावित करने से दूर रहने का निर्देश दिया। 251 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा था, कई तरह के निर्देश दिए थे कि घटना स्थल का रिकंस्ट्रक्शन और अपराध के घटनाक्रम को नहीं दिखाना है, मामले की जांच के विषय में पूर्वानुमान देना और भविष्यवाणी करना मना है, आरोपी पीड़ित के चरित्र का उल्लेख करना और दोनों के लिए पूर्वाग्रह का माहौल नहीं बना सकते हैं, पीड़ित गवाहों और या उनके परिवार के किसी भी सदस्य से साक्षात्कार नहीं कर सकते, उसे स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, गवाहों के बयानों का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के केस में मीडिया के लिए की, गृह मंत्रालय ने 2020 में बना दी। इसके बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ट्रोल और लोग दोनों पूछने लग जाते हैं कि आप केस के डिटेल के बारे में नहीं बता रहे। आप दर्शकों को भी यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्महत्या और बलात्कार के केस में हर डिटेल नहीं बताई जा सकती है, ना ही परिवार का इंटरव्यू चलाया जा सकता है। बेशक यह चुनौती है कि इसका लाभ किसी ना किसी राजनीतिक दल को मिल जाता है और उसका गुप्त तंत्र जैसा चाहता है वैसा फैला देता है। हम इस देश में रहते हैं जहां जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता कितनी है आप जानते हैं। इस वक्त जीरो कहना ठीक नहीं है, लेकिन परसों आप जीरो कह सकते हैं। जहां ईडी किसी संपादक और सांसद को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर ले, कोई कार्रवाई तक ना हो, खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि 5000 केस हैं और सजा 50 में भी नहीं, आपको अपनी जांच बेहतर कर लेनी चाहिए। तो जाहिर है आप आंदोलन खत्म करने से पहले इंसाफ की मांग पर अड़े रहेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या रास्ता बचता है? कैसे खुद को दिलासा देंगे कि आपके साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ ऐसी घटना हुई और आपने कुछ भी नहीं किया? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।